सुंदर गीत सुना हमने, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे। तो रिजल्ट हमारे कर्म पर डिपेंड करती है। सोचना भी हमारा कर्म है, बोलना भी हमारा कर्म है, करना भी हमारा कर्म है। तो अगर पहली स्टेप ठीक कर दी तो दूसरी स्टेप में सफलता ही सफलता है। अगर चाहा ही अच्छा तो बनेगा भी अच्छा, लेकिन चाहा ही अच्छा नहीं तो वही आ जाता है। तो ऐसे ही आज दिन तक तो हम अपने रीति से अपनी जीवन शैली को जी रहे थे, लेकिन अब जब ये ज्ञान मिला है, आध्यात्मिक ज्ञान, तो अगर अपनी जीवन शैली को ही हम आध्यात्मिक बना ले तो रिजल्ट भी तो बदल जाएगा ना फिर। तो स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल से हम कैसे जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी छोटे लाल भाई जी। करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। छोटे लाल भाई ज्ञान में 40 वर्ष से हैं और मधुबन में पिछले 35 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में जो आपकी मुख्य सेवा है मधुबन के अंदर वो है सिक्योरिटी, इसीलिए आपको आप हमेशा इनको आंगन में देखते होंगे, वहां पर रहकर सिक्योरिटी करते हैं। और जो रोज हमारी रात्रि क्लास फिक्स है उस रात्रि क्लास के लिए फैकल्टी को ढूंढ निकालना वो भी आपकी सेवा है। ज्ञान आपको मिला फरीदाबाद हरियाणा से और वहीं से आप मधुबन में समर्पित हुए। सेवाओं के लिए आप भारत भर में ट्रैवल करते हैं और साथ साथ नेपाल में भी गए हैं। आपके लौकिक घर राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव है दारोदा, वहां है आपका लौकिक घर। वहां पर आपकी गीता पाठशाला चलती है घर में और आपके लौकिक परिवार में 4 बहनें हैं वो भी ज्ञान में चलती है। तो बहनों के घरों में गीता पाठशाला चलती है तथा 3 लौकिक बहनों की 5 लड़कियां बाबा के सेंटर पर सेवा में समर्पित हैं। तो बहुत ही लौकिक घर का भी बैकग्राउंड आध्यात्मिक है और खुद भी आध्यात्मिकता पर बहुत गहन अध्ययन करके योग के प्रयोग भी करते रहते हैं। तो कैसे अपनी पूरी जीवन को हम आध्यात्मिक जीवन शैली में अगर बदल दें तो सफलताएं दूर नहीं है। तो अभी हम सुनते हैं आदरणीय छोटे लाल भाई जी से।
ओम शांति। किसी भी कार्य की यदि आपको सही विधि मालूम है तो निश्चित रूप से आप उसमें सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर वैसे तो आप सभी अपनी अपनी रीति से अनेक कार्यों में आगे बढ़ ही रहे हैं, जीवन में उन्नति कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा हम इन बातों को अपना कर चलें, तो हम अनेक कार्यों में पूरा जीवन ही जैसे कि हमारा श्रेष्ठ और महान बन जाएगा, सफलता के पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। तो इन कुछ एक बातों को या कहेंगे कि इस लक्ष्य में सफलता पाने के लिए आपने जीवन में जो भी लक्ष्य रखा है, कार्यों में सफलता पाने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए या जीवन को श्रेष्ठ महान बनाने के लिए, सुख शांत में बनाने के लिए, जरूरी है कि पहले अपने आप का सही ज्ञान होना। हम वास्तव में इस संसार में किस रूप में आए थे, हम अपने आप को क्या समझ कर चलते हैं। अनेक दुख, अशांति, असफलताओं का कारण देखने में आता है कि व्यक्ति आज अपने आप को भूल गया है। बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं तो लौकिक दुनिया के आधार से तो प्राप्त की, सूर्य चांद सितारों पर हैं, सूरज के विसनाए नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक, लेकिन हम कौन हैं इसी बात को हम नहीं जानते। और वास्तव में अनेक परेशानी, समस्याओं का, दुखों का कारण है अपने आप का ज्ञान। तो आप में से काफी तो जानते ही होंगे इस बात को जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, लेकिन जो यहाँ पर पहली बार आए हैं या इतना जिनको ज्ञान नहीं है, तो कुछ तो बातें आपने समझी होंगी, लेकिन हमारा सिर्फ कहने का भाव यही है कि हम जो भी कुछ करें अपने स्वधर्म में स्थित होकर करें। कहने में भी आता है ना कि स्वधर्म ही सुख देता है, कोई देह का धर्म की बात नहीं है, है? लेकिन आत्मा का स्वधर्म क्या है? हाँ, और हाँ बहुत सारी बातें हैं इसमें, केवल शांति ही नहीं, वो तो है ही, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, गुण, शक्तियां हैं। तो ये सभी गुण, अच्छाइयां, महानताएं हमारे जीवन में कब आती हैं? आज शांति को ढूंढने के लिए लोग कितना प्रयत्न करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो अनुभूति नहीं हो पाती है। लेकिन यहां शिव बाबा ने हमें आकर ऐसा ज्ञान दिया जिसके आधार से बहुत ही सहज और सरल अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ कि तुम ये देह नहीं, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, आत्मा हो। अगर इस स्वरूप में हम अपने आप को स्थित कर लेते हैं तो ये सभी देवी गुण और शक्तियां आपके जीवन में स्वतः ही आती चली जाएंगी, जीवन श्रेष्ठ महान बनता चला जाएगा। है कुछ हमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आप अपने स्वधर्म में स्थित होकर चलते हैं तो स्वतः ही अनेक बातें छूटती चली जाएंगी और जो बातें आप जीवन में लाना चाहते हैं वो स्वतः ही आती चली जाएंगी। जिसको कहने में आता है कि योग से योग्यताएं आती हैं। अगर गुण, विशेषता, महानताओं को हम लाना चाहते हैं तो अपने जीवन में ज्ञान और योग का प्रयोग कर चले। और जो अभी गीत सुन रहे थे हम, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तो गीत तो सुना आप सबने, यहाँ ज्ञान की बातें भी सुनी, लेकिन हर एक अपने आप से ये पूछे कि क्या जो हम बनना करना चाहते हैं हम वही सोचते हैं। ये थोड़ी सूक्ष्म गहराई की बात है। यदि हम सारे दिन में अपने विचारों को, हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं उनको चेक करें कि क्या जो हम बनना करना चाहते हैं हम वही सोचते हैं, या कई बार जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते हैं, क्योंकि हमारे एक एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति है वैसा बनने करने की। तो जो हम जीवन में बनना करना चाहते हैं उस विचार को अपने मन में निरंतर बनाए रखें कि मुझे ऐसा करना है, ये बनना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य, बार बार उसको सामने लाए उस लक्ष्य को, तो वैसे लक्षण आते चले जाएंगे। और इसके साथ साथ एक सूक्ष्म और बात एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे थे, तो उन्होंने अपनी क्लास में भी यह बात बताई कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, अब हर एक चेक करना सारे दिन में हमारे मन में कौन से विचार बार बार आते रहते हैं, तो जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है इससे सिद्ध होता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अब क्या वही विचार हमारे मन में हम रख के चलते हैं जो हम बनना करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को जीवन में लेकर चल रहे हैं, या फिर कई बार जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते हैं, क्योंकि हमारे एक एक संकल्प में वैसा बनने करने की शक्ति आती जाती है। जितना जितना हम अपने आप को आत्मा समझकर उस परमात्मा की याद में रहते हैं, उससे योग लगाते हैं, तो हमारे एक एक विचारों में वो पावर आती जाती है सिद्ध होने की। अगर उस स्थिति में ये ध्यान रहे कि अगर उस स्थिति में हमारे अंदर नेगेटिव विचार आ गया, क्योंकि अनेक जन्मों का संस्कार है ना, तो वो भी व्यक्ति चाहता नहीं कोई भी, लेकिन आ जाता है। कोई भी कार्य करने से पहले आपके मन में ये विचार आ गया, पता नहीं ऐसे में करूंगा करूंगी तो होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा फिर, उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। तो कभी भी अगर कमजोर नेगेटिव विचार आए हैं तो उसमें भी सिद्ध होने की पावर है, और वो सिद्ध हो गया तो वह एक समस्या खड़ी हो जाएगी, विघ्न पैदा हो जाए। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को याद किया, एक मिनट के बाद ही वो व्यक्ति सामने आ गया, और किसी को याद किया दो मिनट बाद उसका फोन आ गया है, होता रहता है ना आमतौर पर ऐसा। तो हमारे विचारों में वो शक्ति पावर है सिद्ध होने की, इसलिए हम जो बनना करना चाहते हम वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। ये विशेष ध्यान देने की बात है। और जो मैं बतला रहा था, सफलता के लिए जरूरी है कि उस विचार को हम निरंतर अपने मन में बनाए रखें कि मुझे ऐसा करना है, ये बनना है, तो निश्चित रूप से आप वैसे बनते चले जाएंगे। तो हम अपनी संकल्प शक्ति के महत्व को जानें, उसे पहचानें और नेगेटिव व्यर्थ जाने से बचाएं, पॉजिटिव और पावरफुल बना के चलें। कैसे बनेंगे विचार पॉजिटिव पावरफुल? वो बनेंगे ज्ञान और योग के अभ्यास से। जिस दुनिया में हम सभी रह रहे हैं वहां क्या है, नेगेटिव विचारों का प्रभाव ज्यादा है। ज्ञानी योगी लोग तो बहुत थोड़े ही, कोई 100 200 500 के बीच एक आध दो ही मिलेंगे। तो क्या होता है, ना चाहते भी वो नेगेटिव विचारों वालों का प्रभाव हमारे सभी के ऊपर आता रहता है, और जिसके कारण दुख अशांति टेंशन बढ़ता जाता है। तो अगर आप उन नेगेटिव विचारों के प्रभाव से मुक्त रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि जैसे हम इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए टाइम टू टाइम भोजन रेस्ट सफाई करते हैं ना सभी, ऐसे ही हम, वो तो हुआ शरीर का भोजन, शरीर का भोजन तो रोजाना खाते हैं ना सभी हैं, तभी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं आत्मा का भोजन की। तो आत्मा का भोजन क्या है? ध्यान और योग, शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, पावरफुल संकल्प। तो वो भोजन यदि हम रोजाना लेते रहेंगे तो आप सभी प्रकार के नेगेटिव विचारों के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। तो कैसे, कि संकल्प में सिद्ध होने की पावर है और हम उसकी वैल्यू को समझें। अगर वो नेगेटिव संकल्प है तो नेगेटिव भी अगर, क्योंकि हम अपने ज्ञान योग की स्थिति में निरंतर सब आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने जो बताया ना कि एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, वैसी बनने करने की शक्ति है, और इसलिए ये ध्यान देकर चलें कि हम अपने विचारों में उनको नेगेटिव होने से बचाएं, सदैव पॉजिटिव पावरफुल विचारों का ही स्वरूप बन के चलें। तो कैसे एक संकल्प हमारे मन और शरीर पर असर डालता है, बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात की ओर जाता है। अगर इस बात पर हम अटेंशन देकर चलें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक पहले मैं सुनाता हूं, क्योंकि जो संकल्प कर रहे हैं वैसे हमारे बॉडी में सेल्स का निर्माण होता जाता है और फिर पॉजिटिव नेगेटिव सेल्स से मान लो कैसे भी सेल्स है पहले के वो खत्म होते जाते हैं और वर्तमान में जो सोच रहे वैसे सेल्स बनते जाते हैं। तो वो नए सेल्स का निर्माण किस आधार से होता है हमारे शरीर में? जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे सेल्स का निर्माण होता जाता है और फिर पुराने सेल्स सभी खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक व्यक्ति के शरीर के पूरे बॉडी के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। डॉक्टर भी इस चीज को मानते हैं। तो अब अपने संकल्पों में हम वही संकल्प करें जो हम बनना करना चाहते हैं, तो फिर वैसे सेल्स का निर्माण होता जाएगा और उस कार्य में आप उस आधार से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और अगर नेगेटिव संकल्प आ गया तो फिर वैसे सेल्स का निर्माण होगा और फिर वैसा होगा। अब मान लो एक छोटी सी बात, आपको डॉक्टर के पास आप दिखाने गए और डॉक्टर ने आपको बोल दिया माता जी आपको तो हार्ट की तकलीफ है। पहले से पता नहीं था, लेकिन जब डॉक्टर ने बताया तो आपने मन अपने मन में क्या विचार रख लिया कि मेरे को हार्ट की तकलीफ है, है? तो इससे क्या होगा? अभी वैसे शरीर में सेल्स का निर्माण होता जाएगा। ठीक है, बीमारी अनेक जन्मों का हिसाब किताबें आती है चुप्त होने के लिए, लेकिन उसको हम नेगेटिव रूप से नहीं पॉजिटिव रूप से लें। कोई बात नहीं, आई है, सब ठीक हो जाएगी, हिसाब किताब है, चुक तो हो जाएगा, बाबा बैठा है, भगवान बैठा है, उस सब ठीक कर देगा। तो ये भी एक सोचने का तरीका है। लेकिन यदि उस विचार को हम इस तरह से ले लेते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं ठीक होंगी या नहीं होंगी, तो फिर हमारे शरीर पर उन विचारों का वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे एक संकल्प हमारे मन और शरीर पर असर डालता है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। और पहले मैं सुनाता हूं एक नेगेटिव संकल्प का अनुभव, ताकि हम अपनी संकल्प शक्ति को नेगेटिव होने से बचा सकें, पॉजिटिव पावरफुल बना सकें। एक व्यक्ति था, उसने कुछ ऐसा गलत कार्य किया तो कोर्ट ने उसको मौत की सजा सुना दी। ये समाचार टीवी पर पेपरों में आ गया और ये समाचार एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को पता चला। तो उसने सोचा कि भाई फलानी डेट को फलाने व्यक्ति को फांसी चढ़ाया जा रहा है, तो क्यों न कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मैं इस व्यक्ति को अपने पास ले लेता हूं, मैं भी इसको मारूंगा लेकिन कुछ प्रयोग करके मारूंगा ताकि दूसरों के लिए कुछ नई चीज निकल आए। तो इस लक्ष्य को लेकर उसने कोर्ट में अर्जी दाखिल की और उस कोर्ट ने उसकी अर्जी को मंजूर किया, लेकिन 2 शर्त रखी कि हम इस व्यक्ति को आपको देंगे, लेकिन एक तो पुलिस हिरासत में ही ले जाना होगा, दूसरा आप कुछ भी प्रयोग करो लेकिन इसको मारना जरूर है, क्यों कोर्ट का आदेश था। तो उसने दोनों शर्त मंजूर की डॉक्टर ने, और 2 पुलिस वाले भी उस व्यक्ति के साथ आए और एक और व्यक्ति को बुला लिया, एक डॉक्टर को बुला लिया, सभी 5-6 लोग और एक बंद कमरे में बैठ गए। तो जिस व्यक्ति को फांसी चढ़ाया जाना था उसको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई, हम आपको फांसी नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन हमने जो ये बैग रखा है ना, इसमें एक सांप को बंद करके रखा है और सांप आपको आपके पास लाके छोड़ेंगे और सांप आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसको ऐसे पहले से बता दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वो सांप को देखकर डरे नहीं। इतना कहने के बाद दूसरा जो एक व्यक्ति बुलाया हुआ था मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने, तो उसको कहा भाई जाओ बैग को उठा के लाओ और इसके पास लाके सांप को छोड़ दो। व्यक्ति गया, उसने बैग उठाया और उसके पास लाके उसकी चेन खोली और चेन खोल के उसने कहा कि मैंने अभी सांप को छोड़ दिया है। था उस बैग में कुछ भी नहीं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था तो संकल्पों का कैसे शरीर पर प्रभाव पड़ता उसका प्रयोग करा रहा। उसकी आंखें तो बंद थी, कानों से जरूर सुन रहा था। तो जब उसने इतना कहा कि मैंने अभी सांप को छोड़ दिया है, तो वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उस व्यक्ति के पास गया और उसके पैर में ऐसे हल्के से पिंच बो दी, और पिंच बोने के बाद उसको लगा कि मेरे को अभी सांप ने काट खाया है और अब मैं मर जाऊंगा। बस ये संकल्प धीरे 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 उसके मन में बहुत गहराई तक समाता चला गया, और 15 मिनट के बाद उसके मुख से झाग निकलने लगे, आधा घंटे के बाद उसने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद जो एक दूसरा डॉक्टर बुलाया हुआ था, उस डॉक्टर ने डॉक्टर को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने कहा, भई अभी आप इसके शरीर का थोड़ा सा खून लेकर आप चेक करो। तो उसने उसके शरीर का खून लेकर चेक किया तो उसने पाया कि उसके सारे खून में सांप का जहर कहां से आ गया, सांप ने तो उसको काटा ही नहीं था, कैसे आ गया? संकल्पों के द्वारा, क्योंकि उसके मन में ये संकल्प बहुत गहराई तक समाता चला गया कि मेरे को सांप ने काट खाया और मैं मर जाऊंगा, तो इस संकल्प ने उसके शरीर पर वैसा ही प्रभाव डाला। तो देखो, एक नेगेटिव संकल्प जब इतनी बड़ी शक्ति है, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, तो पॉजिटिव संकल्प में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर शक्ति है, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव संकल्प का अनुभव। भाई थे, इस ज्ञान में चलते थे, और उनको कैंसर हो गया था, और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था कि आप केवल 4 महीने ही जिंदा रहेंगे, जो कुछ करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर्मन में ही नहीं आने दिया, उन्होंने एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया डॉक्टर की बात सुनकर कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है, मुझे इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त बनना है। एकदम डॉक्टर की बात के अपोजिट और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया। तो जैसा कि मैंने बताया, ये नियम है, हम सभी के शरीर में, शरीर जिन सेलों से बना है वो सभी सेल्स हर 4 महीने के अंदर बदल जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं, और नए सेल्स का निर्माण जैसा हम संकल्प करें वैसे होता जाता है। तो उसने जब ये संकल्प किया मुझे जिंदा रहना है, भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है, कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उनके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए, और उस आधार से जो उनके शरीर में कैंसर के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए। और आज इस बात को लगभग 12 साल होने को आए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की यज्ञ की सेवा करार कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। तो आप सोचिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति है। आप लोगों ने ताली तो बजाई लेकिन जोर से नहीं बजाई। इसके पीछे भी एक कारण है, क्यों मैंने ऐसा कहा, देखो जब हम ताली बजाते हैं ना, तो हमारे हाथ में शरीर के सभी अंगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो दबते हैं, और वो दबने से अनेक बीमारियों का इलाज होता ही होता रहेगा। यहां पर एक व्यक्ति आया था कुछ साल पहले, उसने इसी बात के ऊपर 1 घंटा क्लास कराया कि ताली बजाओ और रोग भगाओ। तो हर एक आप में से मॉर्निंग में स्नान के बाद कुछ न कुछ एक्सरसाइज करते ही होंगे, तो उस समय 2 मिनट ताली भी बजा लिया करें। 2 मिनट में 120 बार ताली बजती है, तो गिनती करके 120 बार या ज्यादा ही बजाएं तो कोई हर्जा नहीं, तो वो भी बजा लिया करें, तो इस अनेक बीमारियों का इलाज स्वतः ही होता रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस विचार को बनाए रखें, मुझे ऐसा करना है, ये बनना है, और पॉजिटिव पावरफुल हो हमारा विचार। अगर पॉजिटिव पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो उसमें स्वयं सिद्ध होने की पावर है, वैसा बनने करने की शक्ति है। विचार जितना पॉजिटिव तो हो ही, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली पावरफुल हो। शक्तिशाली विचार कैसे बनेंगे? ज्ञान और योग के मनन चिंतन से, विचार सागर मंथन से। जो बातें आप सुनते हैं यहाँ, या आप में से कई क्लासेज भी करते होंगे, तो जब हम रोजाना जैसा मैंने बताया ना कि जिस संसार में रहे वहां नेगेटिव विचारों का प्रभाव ज्यादा है, तो इसलिए रोजाना यदि ज्ञान योग का क्लास करते रहेंगे तो उससे हमारे विचार महान बनाने में, शक्तिशाली बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। तो जहां विचार महान है तो उसमें स्वतः सिद्ध होने की पावर है, और उस संकल्प को अमृत वेले उठते ही, सुबह सुबह जब उठते हैं तो संकल्प को उठते ही 9 बार अपने अंतर मन में भर दो। जो भी आप बनना करना चाहते हैं, या कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं, या स्वस्थ रहना चाहते हैं, या कोई बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, या कोई और पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना चाहते हैं, बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, उसके विपरीत में पॉजिटिव पावरफुल संकल्प कि मैं, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे इस कार्य में सफलता पानी है। क्योंकि उस समय अमृत वेले सुबह सुबह हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है, तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा। और जब कोई बात आपने स्वीकार कर ली तो फिर आप वैसे करेंगे। ये है इसका विधि सिद्धांत तरीका। इसलिए सुबह सुबह हम उठते ही सभी आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, फिर बाबा को गुड मॉर्निंग करें, या जिस रूप में भी आप भगवान को याद करते हैं गुड मॉर्निंग करें, और दूसरा संकल्प यही करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 9 बार इस संकल्प को रिवाइज कर लें, निश्चय बुद्धि बनकर, एकाग्र मन होकर, एकाग्रचित होकर, तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो पावर आती चले जाए आपके विचारों में, सुबह सुबह उठते ही, दिन में भी और रात को सोते समय भी। 9 बार 21 दिन तक, एक दिन में 3 बार, तो आपको अनेक कार्यों में या पुराने स्वभाव संस्कारों के परिवर्तन करने में, बुरी आदतों को छोड़ने में आपको मदद मिलेगी वैसा बनने करने। एक छोटा सा अनुभव, एक भाई का फोन आया हमारे पास, कहने लगा भाई जी मैंने 4-5 साल से बहुत बिजनेस चेंज करके देख लिए, सब में घाटा घाटा ही होता जा रहा है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, टेंशन हो गया है, मेरा योग नहीं लगता है, कोई संकल्प विकल्प चलते हैं, मैं क्या करूं। तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करो, सुबह सुबह उठते ही पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करो, और दूसरा काम यही करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 9 बार उठते ही यह संकल्प कर लो, सुबह और दिन में भी और रात को सोते समय भी 9-9 बार, एक दिन में 3 बार, 21 दिन तक, और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। और उन्होंने ऐसा किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध कार है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध कार। उठते ही 9 बार इस तरह से उन्होंने करना शुरू किया। पहले दिन किया कुछ पता नहीं चला, दूसरे दिन किया थोड़ा फायदा, तीसरे दिन किया और फायदा, चौथे दिन किया और फायदा, पांचवे दिन किया और फायदा। ऐसे करते करते उन्होंने देखा कि इस बात में तो कुछ दम है, तो क्यों नहीं ज्यादा दिन कर लो, 21 दिन तो पूरे हो गए, उसका रिजल्ट उसको मिल रहा है, तो क्यों नहीं ज्यादा दिन कर लो, है एकाग्र मन से और निश्चय बुद्धि बनकर। है तो वो लगभग 3 महीने तक ये संकल्प का उन्होंने प्रयोग किया, और 3 महीने में उनको 70% प्रोग्रेस हुई, जो बिजनेस बिल्कुल घाटे में जा रहा था। ये है एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प का प्रयोग की शक्ति। इसलिए अब सब ज्ञान, तो ज्ञान की बातें तो आपने बहुत सुनी है, लेकिन और सुनते भी रहेंगे, लेकिन उस ज्ञान और योग का कैसे हम अपने जीवन में प्रयोग कर चलें, ताकि अनेक कार्यों में हम सहज सफलता की अनुभूति करें। इसलिए मैं उसके साथ साथ एक अनुभव सुना रहा हूं, ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। नहीं तो कई बार सोचते हैं ना कि भाई ऐसा करेंगे तो होगा या नहीं होगा, है? लेकिन जब हमने किया तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों ने किया तो आप भी कर सकते हैं, है? लेकिन सही विधि होनी चाहिए। सही विधि हम अपना कर चलते हैं तो निश्चित रूप से सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए हम सुबह सुबह उठते ही हैं महान स्मृतियों का स्वरूप बन जाए हैं। हम आत्मा तो हैं, ये ज्ञान तो आप सबको मिला ही होगा है, लेकिन कौन सी आत्मा है? केवल इससे ही काम नहीं चलेगा अगर जीवन में कुछ पाना है, आगे बढ़ना है तो। लेकिन कौन सी आत्मा है? श्रेष्ठ स्मृति, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं स्वमान। यदि हम भगवान ने हमें बहुत सारे स्वमान या महान स्मृतियां दिलाई है तो मास्टर सर्वशक्तिवान और लाइट हाउस माइट हाउस अवतरित हुए फरिश्ते हुए इस संसार में सबसे हाईएस्ट होलीएस्ट आत्मा हो, महान आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, कौन कितना समझकर चलता है ये हर एक अपने आप से पूछ ले। सुन तो लिया ज्ञान, लेकिन समझकर कितना चल रही? क्योंकि जैसा गीत में सुना ना, जैसा समझकर चलेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। तो फिर वही बात कि जो हम बनना करना चाहते हैं हम क्या वही सोचते हैं, हर एक पूछते चले अपने आप से। सफलता तो सभी चाहते हैं, लेकिन अगर विधि सही नहीं है तो कैसे सिद्धि प्राप्त होगी? तो जो भी महान स्मृतियां इस ज्ञान में आकर आपको मिली हैं, उनका हम एक एक स्वरूप, एक एक बात का स्वरूप बन जाए, वैसा हम अपने आप को समझ कर चलें कि मैं संसार की सबसे महान आत्मा हूं। भगवान का ज्ञान सुनने को मिलना साधारण आत्मा की निशानी नहीं है। इतने श्रेष्ठ स्थान पर आने का भाग्य मिलना ये साधारण आत्मा की निशानी नहीं है। ये वास्तव में आप महान आत्माएं हैं, लेकिन बात है समझकर चलने की, उन स्मृतियों का स्वरूप बन जाने की। तो वो गुण, विशेषताएं, महानताएं हमारे जीवन में स्वतः ही आती चली जाएंगी। जब एक एक स्मृति का, श्रेष्ठ संकल्पों का, पावरफुल विचारों का हम स्वरूप बनकर चलते हैं तो हमारी स्थिति से वैसे वाइब्रेशंस फैलते हैं, वैसा वातावरण वायुमंडल बनता है, और फिर उस अनुसार से आपको अनेक कार्यों में वैसी सफलता मिलती है। तो इसका भी एक अनुभव, एक इस ज्ञान में चलने वाले एक भाई थे, तो उनको उन्होंने एक जमीन के प्लाट के लिए सौदा किया था 4 लाख रुपए में। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता रहता है ना, इसलिए कईयों के साथ ऐसा होता रहता होगा, तो कहीं धोखा हो जाता है, कहीं सफलता मिलती है नहीं मिलती है। तो कैसे सफलता पाएं? तो उसने 4 लाख रुपए में एक जमीन के प्लाट के लिए सौदा किया था। बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, कहा कि फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। तो पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए, तो बोल ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते। तो उसने 4 लाख रुपए दे दिए। पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया, कहा आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। साथ साथ के बराबर के 2 प्लाट थे, बात हुई थी 1 नंबर की, वो देना चाहता है 2 नंबर, कोई मौके की जगह होगी। तो बोल नहीं 1 नंबर का नहीं मिलेगा, 2 नंबर का देंगे। तो बोल नहीं बात तो 1 नंबर की हुई थी, नहीं मेरे को तो वही चाहिए। बोल वो नहीं मिलेगा। तो बोल नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापिस कर दो, कल ले जाना। कल गया, 5 दिन बाद ले जाना, 5 दिन बाद गया, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया, महीना बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे वापस नहीं करा। उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे हैं, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले हैं। तो वो भाई यहां आए थे, तो क्लास के बाद हमारे से मिले, तो यही प्रश्न पूछा कि भाई साहब मेरे सामने ऐसे ऐसे बड़ी समस्या आ गई है, वो व्यक्ति प्लाट भी नहीं दे रहा, पैसे भी नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? तो हमने उनको बताया कि आप एक प्रयोग करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान भगवान से सर्वशक्तियां लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं, ऐसे रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो, और जब योग करें तो भी ये संकल्प करना ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। इनका ये संकल्प जरूर करना तो आपका योग फिर उस दिशा में काम करेगा। तो बोल ठीक है। वो यहां से गए, जाने के बाद और वहां अमृत वेले सबसे बेटर है, सुबह सुबह अमृत वेले का समय, क्योंकि उस समय पर सभी का अंतर्मन शांत और खाली होता है। तो उस समय हम जिस आत्मा को भी पॉजिटिव पावरफुल विचार देते हैं वो उस तक पहुंचते हैं, और उसका अंतर्मन शांत खाली है तो उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेता है और फिर वो आत्मा वैसे करती है। तो इसलिए सबसे सुंदर समय है योग के प्रयोगों में या अनेक कार्यों में सफलता के लिए प्रयोग करने का, सुबह सुबह का अमृत वेले का समय। तो उनका ऐसे अमृत वेले सुबह सुबह रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करना, और जब योग करें तो ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। ये संकल्प इनका जरूर करना तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। ऐसे वो यहां से गए और उन्होंने अमृत वेले उठकर अब ये प्रयोग करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सफलता में मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान भगवान से सर्वशक्तियां लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं, और ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए, इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो योग करता गया और 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चलकर और 4 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया वो पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस ने, शक्तिशाली विचारों ने, योग के प्रयोग के द्वारा संभव हो गया। तो इतनी बड़ी शक्ति है एक पॉजिटिव पावर, शक्तिशाली स्मृतियों में या समान के पावरफुल वाइब्रेशंस के अंदर, जिसके द्वारा एक नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। इसलिए ये ध्यान रखने की बात है कि देखो अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, तो बातें तो हिसाब किताब चुकते होने के लिए तो आएगा, लेकिन हम कभी भी उसे देखकर कोई समस्या परिस्थिति आने के बाद घबराएं नहीं, हिम्मत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ है, वो निरंतर हमारे सभी का साथी बनकर साथ दे रहा है। इसलिए हम अपने विचारों को शक्तिशाली बनाकर चलें, और ज्ञान योग का अभ्यास डेली बहुत जरूरी है, तभी आप जीवन में अनेक कार्यों में सहज सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए, हम अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं। हम अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, आगे बढ़े हैं, सबके जीवन से विघ्न और दुखी घटनाएं खत्म हो जाएं। अब ऐसी शुभ भावना रखने में कोई मेहनत लग रही है क्या? है मेहनत लग रही है, सहज है ना, लेकिन कैसे रहेंगी? और एक व्यक्ति आपसे मान लो गलत व्यवहार करता है, तो क्या ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती है या बदल जाती है? ज्यादातर लोगों की बदल ही जाती है ना है? तो देखो ये नियम है कि यदि हमारे मन की भावनाएं बदल गई हैं तो क्या होगा। जिस आत्मा के लिए मान लो हम नेगेटिव भावना रख के चल रहे हैं अपने मन में, उसके पास भी नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेंगे और वो आत्मा भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रख के चलेगी, तो उसकी नेगेटिव भावनाएं हमारे जीवन में विघ्न रूप बनेंगे, रुकावट डालेंगी, दुख का कारण बनेंगे। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो भले कोई चाहे कैसा व्यवहार हमारे से करे, लेकिन मुझे ये अपने जीवन के कुछ नियम बना ले हैं, ये भी एक सफलता का आधार है कि मुझे सबके प्रति अपने मन में शुभ भावना शुभ कामना रख के चलनी, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबके लिए शुभ सोचना है, मुझे सदा सबका सहयोगी बन के चलना है, किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना है मुझे। जो भी आप अपनी रीति से बना सकते हैं ऐसे कुछ सिद्धांत नियम बना लें, क्योंकि नियम देखो किसी भी कार्य के लिए, कार्य में सफलता के लिए बनाए जाते हैं। जो भी कोई कंपनी बड़े बड़े हैं, ये कंपनियां होती हैं, कारखाने होते हैं, तो वो उनके कुछ नियम होते हैं, भाई इन नियमों का पालन करके चलेंगे तो इस आधार से हम उस कार्य में सहज सफलता प्राप्त कर सकें। तो ऐसे हम भी अपने जीवन के कुछ नियम बना के चले और उनका यदि आप पालन करके चलेंगे, उसमें एक ये भी नियम ऐड कर लें कि मुझे चाहे कोई कितना भी दुख देता हो, तंग करता हो, लेकिन मुझे सदा अपने मन में हरेक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के ही चलना है। कैसे रहेंगी? ये गलत व्यवहार करने वाली आत्मा के प्रति शुभ भावना रहे, सहज काम तो नहीं है। हा? आपको कोई दुख दे रहा हो, तंग कर रहा हो, और फिर भी आप उसके प्रति शुभ भावना रख के चले, इतना आसान काम नहीं है। किस आधार से एक नेगेटिव या गलत व्यवहार करने वाली आत्मा के प्रति भी हमारे मन में शुभ भावना कब रहेंगी? उसके लिए चाहिए आत्मा में ज्ञान और योग का बल निरंतर इमर्ज रूप में रहे, तभी शुभ भावना रह सकेंगी। अन्यथा ज्यादातर लोगों की भावनाएं बदल ही जाती हैं गलत व्यवहार को देखकर। जो भी भगवान के बच्चे बने हैं, जिन्होंने भी उसको जाना है पहचाना है, भले किसी ने जाना है किसी ने नहीं भी जाना है, लेकिन भगवान के बच्चे तो सभी है ना है? तो एक बाप के बच्चे क्या हो गए? आपस में भाई भाई है, भाई बहन। तो भाई बहन के प्रति कैसी भावना रख के चलता है? शुभ भावना है, अच्छी भावना रखेगा। तो वास्तव में हम सभी उस एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन है, भाई भाई हैं या भाई बहन है। तो हमको भी अपने मन में कि ये हमारे ही परिवार के अपने ही भाई बहन हैं, ऐसी भावना जब अपने मन में रख के चलेंगे हैं, तो उस आधार से भी हमारे मन की भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी रहेंगी। और इसके साथ साथ ये सभी हमारे ईश्वरीय परिवार के अपने ही भाई बहन हैं। अपने परिवार में देखो, कोई मान लो सभी एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, परिवार में कोई अच्छा भी होता है, किसी के अंदर कोई कमी कमजोरी भी होती है, कोई नेगेटिव संस्कार वाले भी होते हैं, कई हैं। तो माँ बाप उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ये काम करना ठीक नहीं है, आप ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। भाई बहने भी शुभ भावना रखते हैं उनके प्रति, भाई चलो आज नहीं कल बदल जाएंगे हैं, इसको उसको सहयोग देते हैं उस गलत व्यवहार को ठीक करने में, उसकी मदद करते हैं। तो ऐसे ही हम भी, भले कोई हमारे से गलत व्यवहार करता हो, फिर भी अपने मन में चलो अपने ही भाई बहने आज नहीं तो कल बदल जाएंगे हैं, इनका कल्याण हो, इनकी ये नेगेटिव आदत बदल जाए, ये जीवन में आगे बढ़े, सुखी रहें, ऐसी जहां भावना हम अपने मन में रख के चलेंगे, तो उससे धीरे धीरे उस आत्मा में परिवर्तन आएगा। और जहां हमें ये ज्ञान मिला है ना भी सभी अपने ही भाई बहन हैं, तो उस ज्ञान को जब हम रोजाना इमर्ज रूप में रख के चलेंगे हैं, आज जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है अपने अपने तरीके से तो सब ठीक ही कर रहे हैं, कोई ये तो सोच के नहीं करता कि ये गलत काम है इसलिए मैं करूं है, सब यही सोच करते हैं ना भाई अच्छा काम है, तो अपनी अपनी रीति सब अच्छा ही करते हैं। लेकिन ये ज्ञान हमारे सामने एक दर्पण है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, इसकी हमें पूरी अगर नॉलेज हम इमर्ज रूप में रख के चलते हैं, तो आप गलत कर्मों से सहज बच सकते हैं। फिर जो भी कर्म आप करेंगे वो आपके कर्म श्रेष्ठ और महान होंगे, ज्ञान के आधार से, ज्ञान युक्त होकर कर्म करेंगे, ज्ञान स्वरूप बनकर कर्म करेंगे। तो मैं दो मिनट में यह परिभाषा आपको बता देता हूं कि श्रेष्ठ कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, ताकि हम उनसे बच सके और अपने कर्मों को श्रेष्ठ महान बना सके। जो कर्म गलत कर्म क्या है, जो कर्म देह भान में स्थित होकर मैं फलानी हूं या फलाना हूं, यह हुआ देह का भान ना है, जिस नाम रूप से भी आप या जाति वाले या कोई गुण कर्तव्य वाले अपने को समझकर चलते हैं, मैं फलानी नाम रूप वाला हूं, तो ये देह का भान जहां है, जो कर्म देह भान में स्थित होकर और परमात्मा की विस्मृति में रहते हुए है। अगर आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो जरूर जो भी कर्म होंगे उसकी विस्मृति में ही होंगे। और स्वार्थ सहित किया जाता है, मेरा काम से दो जाए, दूसरे का भले कुछ भी हो। और ज्यादातर दुनिया में क्या हो रहा है, आज यही हो रहा है, अपने लिए भक्ति सब कुछ कर रहा है लेकिन दूसरे का वो नहीं देख रहा, दूसरे को दुख देके परेशान करके भी मैं सुखी बन जाऊं, कैसे सुखी बनेगा है। सुख देने का आधार तो है, सुख देंगे तो सुख मिलेगा ना, आप दूसरों को दे दुख रहे हैं तो सुखी कैसे बन पाएंगे है? दुख देंगे तो दुखी होंगे। तो इसलिए जो कर्म देह भान में स्थित होकर परमात्मा की विस्मृति में रहकर और स्वार्थ सहित किया जाता है वो कर्म पाप कर्म कहलाता है, गलत कर्म कहलाता है। श्रेष्ठ कर्म क्या है, जो कर्म आत्मअभिमानी बनकर, तो उसके लिए पहले आत्मा का ज्ञान चाहिए तभी आत्मअभिमानी बनकर रह सकेंगे ना, और दूसरा परमात्मा की याद में रहते हुए, तो उसके लिए परमात्मा का पूरा ज्ञान हो, नॉलेज हो, तभी उसकी याद में रह सकेंगे। और निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावनाओं के साथ किया जाता है वो कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। अब आप इन दोनों बातों को सामने, दोनों परिभाषाओं को सामने रखकर आप देख लीजिए कि आज संसार में ज्यादातर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहां वालों को छोड़ दो लेकिन दुनिया को सामने रख के आप देखो, पाप कर्म हो रहे हैं ना है? क्योंकि जहां आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा की पूरी नॉलेज नहीं है, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान नहीं है, भावनाएं सुख श्रेष्ठ कल्याणकारी नहीं है, तो जो भी कर्म हो रहे हैं वो किस खाते में जा रहे हैं, पाप कर्म के खाते में, गलत कर्म के खाते में जा रहे हैं। जब वो गलत कर्म रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, दुख अशांति टेंशन बढ़ता जाएगा, परेशानियां समस्याएं, से व्यक्ति अपने आप को आज घिरा हुआ अनुभव कर रहा है। तो कर्मों का भी आधार हम बतला रहे थे, हमारे मन की भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी हो, तो ये भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी कैसे बनेंगी, जब हम रोजाना ज्ञान का श्रवण करेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, महावाकीश्वरी महावाक्य सुनेंगे, तो उस आधार से आपकी भावनाएं निरंतर शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनी रहेंगी। किसी ने आपको दुख दिया, आपने भी उसको दुख दिया, तो क्या हो गया, तो और ही हिसाब किताब बढ़ गया ना भाई, अज्ञान के वशीभूत हमने जो भी आज तक करते कर्म करते आए तो वो तो चलो ज्ञान नहीं था इसलिए किया है, और उस आधार से उसका फल हम भोग रहे हैं, लेकिन अब आपको ज्ञान मिल रहा है, समझ मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है, इस आधार से तो हम अपने कर्मों को महान बना सकते हैं ना, श्रेष्ठ बना सकते हैं ना, अपनी भावनाओं को सब श्रेष्ठ कल्याणकारी बना सकते हैं ना, तो गलत कर्म से बचा जा सकता है, तभी हमारा जीवन सुखी बनेगा। तो इस आधार से हम अपने मन की जहां भावनाओं को सब श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाकर चलते हैं तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना देंगी, इतनी बड़ी शक्ति। इस पर भी एक छोटा सा अनुभव, मेरे से कहीं ज्यादा आप लोग जो माताएं या घरों में रहते हैं परिवार में वो इस बात के ज्यादा अनुभवी होंगे, कोई भाई सुना रहे थे अनुभव, तो एक घर में एक सास अपनी बहू को बहुत तंग करती थी, बहुत उल्टा सीधा बोलती, ताने देती रोजाना का, तू ऐसी है वैसी है ये है वो है। अब बहू सुन सुनकर बड़ी परेशान हो गई, इस घर में मैं कैसे जीवन बताऊंगी है, मेरे को रोजाना सुनना पड़ रहा है। तो अगले दिन वो अपने पड़ोसिन के पास गई कुछ काम से, तो बातचीत करते करते और उसने अपनी समस्या जो थी, दुख परेशानी, वो इस पड़ोसिन की माता को बताई कि मेरी सासू बहुत तंग करती है, मेरे को बहुत दुख देती है, मैं बहुत परेशान हूं, उल्टा सीधा बोलती है, मैं कैसे इस घर में जीवन बिताऊंगी। तो पड़ोस की माता ने उसको सलाह दी कि जो आप भोजन बनाते हैं ना, उसमें दो बूंद जहर की डालकर खिला दो, सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी माताजी की, आपका रास्ता साफ। तो उसको भी लगा बात तो ठीक है, तो उसने प्लान बना लिया। प्लान बना लिया तो उसके अगले दिन वो मार्केट में कुछ खरीदारी करने गई। तो खरीदारी करने गई तो वहां दुकान पर उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई। तो बातचीत करते करते और उससे नहीं रहा गया, तो जो भी प्लान था अपना वो उसको सहेली को बता दिया। तो मैं तो यही कहूंगा कि माताओं बहनों की ये विशेषता ही कहूंगा कि वो अपने मन में कोई बात रख नहीं पाती है, जल्दी से दूसरों को बता देती है। और इस विशेषता का फायदा भगवान ने यहां ब्रह्मा कुमारी आश्रम में उठाया तो सबसे पहले माताओं बहनों को ही ज्ञान दिया ताकि वो जल्दी से सबको भगवान का परिचय दे दे। इसलिए ज्ञान सुनाने के लिए सेंटरों पर बहनों को ही निमित्त बनाया है। तो उसने अपनी सारा प्लान बातचीत करते करते और उस सहेली को बता दिया। तो उसकी सहेली ने पहले तो उसको बहुत बहुत खुश हुई कि आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन आप ऐसा करो, ये प्लान आप एक महीने के बाद प्रैक्टिकल करना, और आज से मैं जैसे बताते हूँ वैसे करो। तो उसकी जो सहेली थी वो इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के ज्ञान में चलती थी। तो बोल ठीक है बताइए, मैं वैसे करूंगी, क्योंकि उसकी सहेली थी तो सहेली की बात उसने मानी। तो बोल आज से आप ऐसा करो, अपने मन की भावनाओं को अपनी सासू के प्रति कंप्लीट बदल दो, उसकी गुण विशेषता देखो, उसके प्रति शुभ भावना रख के चलो और उसका सम्मान करो, इज्जत दो उसको कि मेरी सासू बहुत अच्छी है, उनके अंदर ये गुण विशेषता है, और उसका अपना काम भी, घर का काम भी बिना बताए ही सब कुछ आगे से आगे कर लो, उसको बोलने का कोई अवसर नहीं दो, और उसका सम्मान करो, उसकी इज्जत करो, उसकी गुण विशेषता देखो और उसके प्रति शुभ भावना रख के चलो। ऐसा व्यवहार आप एक महीने तक करो, फिर उसके बाद आपको जैसा लगे वैसे करना। तो बोल ठीक है। तो घर गई, वहीं से अपनी भावनाएं उसने चेंज कर दी कि मेरी सासू बहुत अच्छी है, उनके अंदर ये गुण विशेषता है, वो ऐसी है ऐसी है, और अपना भी काम, घर का भी काम, बिना सासू का भी काम बिना बताए ही कर लेती है, और बहुत उसकी इज्जत करती, उसका सम्मान देकर चलती, आगे रखती उसको। तो जब ऐसा व्यवहार करते करते कुछ दिनों में जो सासू ने देखा अच्छा व्यवहार मिला उसको, तो धीरे धीरे जो सासू के मन की भावना थी बहू के प्रति, वो क्या हुआ, धीरे धीरे बदलती चली गई कि मेरी बहू में तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बनती जा रही है, मेरे से भी अच्छा व्यवहार करती है, अपना काम भी, मेरा काम भी बिना बताए घर का काम भी कर लेती है, और मेरी बहुत इज्जत करती है, मेरे को आगे रखती है, तो ये तो बहुत अच्छी बनती जा रही है। तो ऐसे अच्छे व्यवहार को पाकर जो सासू के मन की भावना थी वो धीरे धीरे बहू के प्रति बदलती चली गई, धीरे धीरे बदलती चली गई। तो ऐसे अच्छा व्यवहार जब बहू ने सासू के प्रति किया तो सासू भी फिर बहू के प्रति अच्छा व्यवहार करने लगी। जब एक महीने तक दोनों ने एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार किया तो जो मरने मारने की बात थी वो तो खत्म ही हो गई और दोनों का जीवन सुख शांति में बन गया। तो इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन को सुख शांति में बनाना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो समाधान ये नहीं कि एक ने हमारे ऊपर पत्थर फेंका तो हम भी दो फेंक दें, नहीं, हम उसका जवाब रिगार्ड, रिस्पेक्ट से, इज्जत दे दें, उसको सुख दे कर दें, उसको रियलाइज कराएं हैं कि सुख दूसरों को कुछ गलत बोलने में नहीं, सुख देने में, अच्छा व्यवहार करने में सुख मिलेगा। तो जैसा हम बनना करना चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें तो निश्चित रूप से आपको भी दूसरों से फिर वैसा ही व्यवहार मिलेगा। हर एक को यही चाहता ना, मेरे साथ सभी अच्छा व्यवहार करें, मेरे को आगे रखें, मेरी इज्जत करें, रिगार्ड रिस्पेक्ट दें। तो आप दूसरों को देंगे तो आपको मिलेगा, ऐसी बात है ना। तो हम ये ध्यान देकर चलें कि मुझे ये भी एक प्रतिज्ञा कर लें, नियम बना लें कि मुझे सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो नेचुरल एक दूसरों से भी आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा, और फिर जब आपको अपने अनुसार अच्छा व्यवहार मिलेगा तो फिर जीवन में आप जैसा बनना करना चाहते हैं उसमें से सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। और हम अपने बोल व्यवहार कर्मों से सबको सहयोग दें, स्नेह दें, रिगार्ड रिस्पेक्ट दें, तो फिर आपको स्वतः ही मिलेगा वैसा। अब सहयोग लेना तो सभी चाहते हैं, लेकिन देने वाले बहुत कम होते हैं। दुनिया में लेना तो सभी चाहते हैं, लेकिन देने वाले बहुत कम होते हैं। तो मिलेगा कैसे है? मिलेगा तो तब ना भाई, जब आप दूसरों को देंगे, जैसा व्यवहार करेंगे वैसा मिलेगा आपको। तो हम सभी आज से यहाँ ये बाबा के आगे प्रतिज्ञा करें कि मुझे आज से सबको स्नेह प्यार रिगार्ड रिस्पेक्ट देना, सबके साथ सहयोगी बन के चलना है। तो सहयोगी ही सहज योगी बन जाते हैं। सहयोग देने से स्वतः ही आपको सहयोग मिलता रहेगा। देखिए प्रयोग करके। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी। एक बार देवताओं को और राक्षसों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया गया। तो पहले बुलाया गया राक्षसों को, उनकी पसंदी का भोजन उनको पूछ लिया गया और डेट बता दी गई, आपकी पसंदी का भोजन आपको मिलेगा, लेकिन एक शर्त का पालन करना पड़ेगा। क्या शर्त होगी? कि भोजन करना है लेकिन हाथ नहीं मुड़ना चाहिए। अब आप सोच लें कि आप बिना हाथ मोड़े कैसे भोजन कर सकते हैं, सोच लेना। उसके बाद उनको डेट बता दी गई, उसके बाद दोबारा बुलाया गया देवताओं को, उनकी पसंदी का भोजन उनको पूछ लिया गया और डेट बता दी गई और शर्त बता दी गई उनको कि आपकी पसंदी का भोजन आपको मिलेगा लेकिन इस शर्त का पालन करना पड़ेगा। तो बोल ठीक है। तो डेट आई तो पहले बुलाया गया राक्षसों को, उनकी पसंदी का भोजन उनको परोस दिया गया और शर्त बता दी गई कि भाई हाथ नहीं मुड़ना चाहिए, भोजन करना है। तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ऐसे कैसे होगा, बिना हाथ मोड़े कैसे भोजन करेंगे, ये है वो है, और गुस्सा करके एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल के और चले गए। उनको समझ में नहीं आया कि बिना हाथ मोड़े कैसे भोजन किया जाए, क्योंकि राक्षसी बुद्धि थे। दोबारा बुलाया गया देवताओं को, उनकी पसंदी का भोजन उनको परोस दिया गया, उनको भी शर्त बता दी गई कि भाई भोजन करना है लेकिन हाथ नहीं मुड़ना चाहिए। तो देवता अर्थात दैवी गुणों वाले इंसान, जिनके अंदर सभी दैवी गुण विशेषताएं महानताएं हों, तो उनमें से एक ने कहा, बोली ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा करो आप मेरे सामने बैठो, मैं आपके सामने बैठता हूँ, आप मेरे को खिलाना, मैं आपको खिलाऊंगा, तो हाथ भी सीधा रहेगा और दोनों का काम भी हो जाएगा। तो पहले ने दूसरे को, दूसरे ने पहले को सहयोग दिया, तो एक दूसरे के सहयोग से सबका काम सहज हो गया है। तो यहाँ पर भी आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो हम क्या अकेले नहीं है? हम जिस समाज में रहते हैं तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना सभी, है? कोई व्यक्ति अकेला नहीं है। तो हम एक दूसरे के सहयोगी बन के चले, स्नेह प्यार दें, रिगार्ड रिस्पेक्ट दें, तो आपको स्वतः ही अच्छा व्यवहार मिलेगा और फिर आप जीवन में आगे सहज सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और सफलता का आधार है जीवन में कि हम अपने बोल व्यवहार कर्मों से सबको सुख देकर चले, कभी भी किसी को गलती से भी दुख ना दे। क्योंकि दुख दिया तो क्या उसका रिजल्ट कहने में क्या आता है, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, सुख देंगे तो जीवन सुखी बनता चला जाएगा है? तो इसके लिए पहले जो मैंने ज्ञान बताया, सुखी कर्मों का, श्रेष्ठ कर्म का आधार, उस ज्ञान योग को अपना कर चले हम, उस विधि से कर्म करें तो आपके श्रेष्ठ कर्म महान होंगे, श्रेष्ठ होंगे। इसलिए ये भी एक प्रतिज्ञा कर ले, ये भी एक नियम बना ले अपने जीवन का, भले कोई मेरे साथ कैसा व्यवहार करे लेकिन मुझे अपने बोल व्यवहार कर्मों से सबको सुख देना है। कब दे सकेंगे? ज- जबकि आपको ये ज्ञान कर्मुखी गुहे गति का ज्ञान होगा। आज हम सब में जिसके साथ भी जो अच्छा बुरा या जैसा भी व्यवहार आपको एक दूसरों से देखने को सुनने को मिलता है, कोई मान लो आपको दुख देता है, कोई बहुत विघन डालता है, कोई अपशब्द बोल देता है, इस सब के पीछे राज है। हम तो ये उस व्यक्ति को देखकर सोचते हैं, अरे ये मेरे साथ सदा ही पीछे पड़ा रहता है, ये मेरे को सदा ही तंग करता रहता है, इसने मेरे को बहुत दुख दिया है। लेकिन इन सब के पीछे हमारे कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है और वो वैसे ही चुकतू होना है। इसलिए बिना कर्म के हिसाब किताब के कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम इस कर्मों की गुहे गति को, ज्ञान को यदि इमर्ज रूप में रख के चलेंगे तो कभी दुखी परेशान नहीं होंगे। और दूसरा जो बताया कि हम सदा अपने बोल व्यवहार कर्मों से सबको सुख दें। अगर आपने दुख दिया है तो उसका रिजल्ट दुख भोगना ही पड़ेगा, निश्चित है। और लेकिन उसका परिणाम आपका, अगर आप ज्ञान योग का अभ्यास करके चलते हैं तो उससे आपको सहयोग मिलेगा। दुख तो तभी भोगना पड़ेगा रिजल्ट गलत कर्म का, लेकिन अगर आप ज्ञान योग का अभ्यास करके चलते हैं तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, दुख का जो रिजल्ट है वो सूली से कांटा हो जाएगा। अब कहां किसी को सूली पर चढ़ाया जाए और कहां एक कांटा ही चुबा के छोड़ दिया जाए, तो कितना अंतर हो गया ना। तो इतना बड़ा एक उसमें सहयोग मिलेगा आपको ज्ञान योग के अभ्यास से, लेकिन भोगना जरूर पड़ेगा है? तो इसलिए हम अपने बोल व्यवहार कर्मों में दूसरों को दुख देने से बचे, हमेशा सुख देकर चले। इसके ऊपर भी एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक बुड्ढा था, बुजुर्ग आदमी, तो कहीं कुंभ मेला लगा था, तो लोगों की भावना होती है भाई कुंभ मेले में गंगा जी में स्नान कर लिया अगर एक बार तो हमारा सब पाप धुल गए हैं। अगर ऐसा होता तो कितने सालों से लोग गंगा जी में जमुना जी में स्नान करते आ रहे हैं, तो अब तक तो सबका पाप धुल गए होते, जीवन सुख शांत में बन गया होता। लेकिन हो क्या रहा है, और इस दिनों दिन व्यक्ति का जीवन दुख शांत में बनता जा रहा है। तो वास्तव में वो पानी की बात नहीं, लेकिन ज्ञान योग के जल की बात है। अगर उसमें आप डेली स्नान करते हैं तो जरूर आत्मा पावन बन जाएगी। तो खैर वो तो भावनाओं की बात है लोगों की। तो वो स्नान करने उसने सोचा कि भाई मैं भी एक बार गंगा जी में स्नान कर आता हूं तो चलो सफल हो जाएगा जीवन। तो जा रहा था तो आगे चल के उसको बहुत भीड़ मिली, तो उसने सोचा कहीं कोई धक्का मुक्की हो जाए, कहीं गिर गिरा जाऊं, तो कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो मेरे को मदद करे तो अच्छा रहेगा। तो आगे चल के देखा उसने एक जवान लड़का जा रहा था, तो उसने कहा बेटा आप थोड़ा मेरी मदद करेंगे, मेरे को गंगा जी में स्नान करने जाना है। तो बोल ठीक है मैं भी उधर चल रहा हूं, चलो जी। तो उसके पास एक झोला था और एक डंडा था, उसको पकड़ा दिया और उसके साथ वो चल पड़ा। तो गया तो जहां घाट बने हुए थे स्नान करने के, तो वहां उस लड़के को बोला बेटा आप यहां बैठो, मैं अभी स्नान करके आता हूं, ये झोला डंडा मेरा अपने पास रखना संभाल के। तो बोल ठीक है। तो वो झोला डंडा देखकर बुड्ढा स्नान करने के लिए गया घाट पर। गया तो वहां भीड़ थी थोड़ा, जहां बहुत लोग स्नान कर रहे, तो उसको देरी लग रही थी। अब ये लड़का सोचता है इतनी देर होगी, बुड्ढा अभी तक आया नहीं है और मेरे को जाना भी है, पता नहीं और कितनी देर लगा के। ऐसे सोचते सोचते उसका ध्यान उस झोले की तरफ गया, बैग की तरफ। तो उसने सोचा देखो तो सही बुड्ढे ने क्या रखा हुआ है बैग में है। तो चैन खोल के उसकी देखता है तो उसमें तो बहुत सारे पैसे रखे हुए थे, और इतने पैसे थे कि उसका पैसे देख कर लड़के का मन ललचा गया कि तो इतना पैसा है, अगर मैं ले जाऊंगा तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मेरा जीवन ऐसे ही बेड़ा पार हो जाएगा। चलो छोड़ो, पता नहीं बुड्ढा कब आएगा। और वो लेकर झोले को चल पड़ा वहां से। चल पड़ा तो थोड़ी देर के बाद जब बुड्ढा आया तो हाय मेरा डंडा, हाय मेरा झोला, क्योंकि सारे जीवन की कमाई बुड्ढे की उसमें थी। तो उसको हार्ट अटैक आया ये देखकर और उसने शरीर छोड़ दिया। उधर जो गया पैसे का झोला लेकर, उसने एक दुकान खोल ली। दुकान में बढ़ोतरी होती गई और बहुत फायदा हुआ, तो एक कंपनी खड़ी कर ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए कुछ दिनों के बाद। बच्चों को पढ़ाने के लिए धीरे धीरे बड़े हुए पालना करता रहा, कंपनी चलाता रहा, और बच्चे जब बड़े हुए तो उनको पढ़ाई के लिए बैठा दिया गया, एक को डॉक्टरी की पढ़ाई, एक को इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाने की। जब पढ़ाई पढ़ के पूरे हुआ तो डॉक्टर बनने की बात आई तो पहले हेल्थ की चेकिंग होती है, तो हेल्थ की चेकिंग में उसके ब्रेन में ट्यूमर निकला, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ठीक है जी, क्राई ऑपरेशन, ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और ये लड़का सीरियस होता गया होता गया। तो उसने कहा, बोल फिर बड़े हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए, तो बोल कितना पैसा खर्च हो लेकिन लड़का ठीक होना चाहिए, तो फिर दोबारा बोल ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर ऑपरेशन हुआ दोबारा, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और ये सीरियस होता गया होता गया। तो जितना उसने पैसा कमाया सब उस लड़के की बीमारी में लगाता गया, और जैसे वो पहले स्थिति में था उसी स्थिति में पहुंच गया, और वो लड़का बिल्कुल उसका सीरियस होता चला गया होता गया। और जिस दिन उसके लड़के का शरीर छोड़ने का समय आता है, उसी दिन रात को वो बुढ़ा उस लड़के के स्वप्न में आता है और कहता है कि देखो बेटा, आप मेरे पैसे का झोला लेकर आ गए और मैंने आपके लड़के के रूप में जन्म लिया है और मैंने अपना सारे पैसे का हिसाब किताब आपसे चुकता कर लिया और मैं जा रहा हूँ। बस उसी रात को उसके लड़के ने शरीर छोड़ दिया। ये प्रैक्टिकल की घटना है। अब आप वर्तमान को इस अनुभव को वर्तमान की रीति से देखो तो कैसा लगेगा। उसके साथ तो बड़ा अन्याय हो गया, उसका लड़का भी गया, कंपनी भी बंद करनी पड़ी, दुकान भी बंद करनी पड़ी, तो बड़ा गलत हो गया ना। केवल वर्तमान की रीति से देखो तो, लेकिन इन सब के पीछे क्या है, कर्म का हिसाब किताब। वो किसी को नहीं छोड़ता है। यदि आपने गलत कर्म किया है तो उसका परिणाम आपको गलत भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए ये ध्यान रहे कि आप सदा ही ज्ञान और योगी बनकर अभ्यास करते हुए हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, अपने बोल व्यवहार कर्मों से सबको सुख दें, कभी किसी को दुख ना दें। तो अगर हम अपने बोल व्यवहार कर्मों से सबको सुख देकर चलते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी सुखी बनता चला जाएगा और अनेक कार्यों में आपको सफलता अनुभव होती चली जाएगी। और जीवन में सफलता पाने के लिए थोड़ा सा मैंने जैसा कि पहले बताया कि हम अपने जीवन के कुछ ऐसे सिद्धांत नियम बनाकर चले कि मुझे ये करना है ये नहीं करना है, मुझे ये ऐसा सोचना है ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि कार्यों में सफलता के लिए आज जो भी देखो दुनिया में बड़े व्यक्ति हैं, उनका हर समय का कुछ न कुछ जो टाइम टेबल है वो फिक्स होता है, क्योंकि इतने समय से इतने समय तक ये कार्य करना है, इतने समय तक ये कार्य करना है। तो हम भी तो यहां कितने बड़े आदमी बनने जा रहे हैं। जीवन को महान बनाना है, हमें सफलता पानी है, तो इस लक्ष्य को लेकर हम अपने कुछ जीवन के ऐसे सिद्धांत नियम बना के चले। मुझे किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, अपने बोल व्यवहार कर्मों से सबको सुख देना है, सहयोगी बन के चलना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जो भी आप बना सकते हो अपने अनुसार ऐसे कुछ नियम बना के चले, तो इन नियमों में जब हम बांध के चलते हैं तो जितना हम नियम मर्यादाओं की पालना करके चलेंगे, यहां भी संस्था के कुछ नियम है ना, हम उनमें रहकर चलते हैं तो हमें उसका फायदा मिलता है, जीवन में प्रोग्रेस होती है। तो आप भी अपने जीवन के कुछ ऐसे नियम बना लें और उनकी पालना आप रोजाना करके चले। तो नियम का जितना हम पालन करके चलेंगे, जितना कायदों का पालन करके चलेंगे, उतना उसका फायदा मिलता रहेगा और आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी। एक आलसी व्यक्ति था, बहुत आलसी था, जीवन में करना बहुत कुछ चाहता था वो, लेकिन आलस का संस्कार उसको करने नहीं देता था, वो खाता पीता और सो जाता था। तो खुद भी बड़ा परेशान था, तो परेशान होकर और वो व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहा कि महाराज, मैं इस आलस के संस्कार से मुक्त होना चाहता हूं, कोई विधि बताओ। बोले अच्छा, तो गुरु जी को पता था कि बहुत आलसी है, तो कुछ मैं भी कहूंगा तो कुछ करेगा तो नहीं, क्योंकि आलसी है। तो गुरु जी ने सोचा कि इसको बोलते हैं कि अपने जीवन का कोई एक ऐसा नियम बना ले जिसकी पालना ये रोजाना करके चल सके। तो गुरु जी ने कहा भाई देखो ऐसा है, आप अपने जीवन का कोई एक ऐसा नियम बना लो जिसकी पालना आप रोजाना करके चल सको। अब वो सोचने लगा ऐसा मैं क्या नियम बनाऊं जिसकी पालना मैं रोजाना करके चल सकूं। तो उसने देखा सुबह 9 बजे एक व्यक्ति उसके घर के आगे होकर जाता है और शाम को 5 बजे वापस आता है। तो उसने सोचा मेरे लिए ये नियम ठीक रहेगा कि सुबह 9 बजे इस व्यक्ति को देखने के बाद ही मैं नाश्ता करूंगा। अब इसमें तो उसको कुछ करना ही नहीं है, है? तो 9 बजने 5 मिनट पहले घर के गेट के आगे खड़ा हो जाए, वो व्यक्ति आए और उसे देखे, वो नाश्ता कर ले, तो सहज इस नियम का पालन करके चलना उसके लिए। तो ऐसे 5 दिन बीते, 10 दिन, महीना, 2 महीना बीत गए, 3 महीना बीत गए करते करते। तो 3 महीने के बाद क्या हुआ कि वो व्यक्ति एक दिन 9 बजे नहीं आया। तो नहीं आया तो बड़ा परेशान, ये क्यों नहीं आया, कहां गया, इधर देखे उधर देखे, अंदर जाए बाहर आए हैं। अब उसका नियम बन गया उसे बिना देखे वो नाश्ता नहीं कर सकता, उसको भूख भी लग रही है, हा? बड़ा परेशान है। तो ऐसे देखते देखते उसने देखा कि उसके घर के गेट के थोड़ा सा दूर खेतों में वही व्यक्ति कुछ खोद रहा है। अरे बोले ये तो वहां खोद रहा है। तो जैसे इस व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी तो वो व्यक्ति जो खेतों में खोद रहा था, तो खोदते खोदते उसको एक सोने की मोहरों का भरा हुआ घड़ा निकल आया। उसने देखा ये तो बहुत बड़ा खजाना है, तो मैं निकाल तो रहा हूं ये खजाना, लेकिन मेरे को कोई देख तो नहीं रहा है। अगर किसी ने देख लिया यार, पुलिस या गवर्नमेंट को बता दिया तो सारा खजाना हमारे हाथ से चला जाएगा, हम ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए मैं देख तो निकाल तो रहा हूं लेकिन कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है। ऐसे ऐसे वो इधर उधर देखने लगा, तो इतने में इस व्यक्ति की नजर उस पर पड़ गई। तो देखकर जोर से चिल्लाता है कि मैंने देख लिया है, देख लिया, देख लिया। अरे बोले तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला, इसने देख लिया और किसी को बता दिया तो सारा खजाना हमारे हाथ से चला जाएगा। तो बजाय वो निकाल लेके वहीं थोड़ा सा दबाकर और दौड़ के इस व्यक्ति के पास आता है। तो उसको कहता है कि भले भाई आपने देख लिया है, लेकिन आप किसको बताना नहीं, हम आधी सोने की मोहरे आपको दे देंगे। बोले क्या बोल रहे हैं आप, क्योंकि उसको तो कुछ मालूम नहीं था, वो तो इसलिए चिल्लाया कि मैंने देख लिया तो मेरा नियम पूरा हो गया, मैं नाश्ता करूंगा, मेरे को भूख लग रही है। और उसने ये समझ लिया कि मेरे किसने खजाना निकालते हुए देख लिया है। तब उस व्यक्ति ने बताया कि देखो आपने जब जोर से चिल्लाया ना कि मैंने देख लिया है, तो मैं जो वहां खोद रहा था ना जमीन से, तो खोदते खोदते एक सोने की मोहरों का भरा हुआ घड़ा निकल आया है, तो आप किसको बताना नहीं, हम आधी सोने की मोहरें आपको दे देंगे। वाह, ये तो बड़ा खुश हो गया व्यक्ति कि बिना कुछ मेहनत के इतने बड़े खजाने का मालिक बन गया। किस आधार से? एक छोटे से नियम का पालन करके चलने से। तो वो तो देखो विनाशी धन है, कोई गारंटी नहीं इस जीवन में भी कब तक रहे ना रहे, लेकिन यहां जो बाबा हमें अनेक जन्मों के लिए अविनाशी खजानों के प्राप्तियों के अधिकारी बना रहे, मनुष्य देवता बना रहे हैं, उन सब का आधार क्या है? ईश्वरीय नियम मर्यादाओं की पालना करके हम चले। तो और उसमें सबसे पहला नियम मर्यादा क्या है कि अमृत वेले उठकर भगवान को जरूर याद करना है। दूसरा, मुरली क्लास जरूर सुननी है, ईश्वरीय महावाक्य जरूर सुनने। इन दो नियमों का आप यदि पालन करके चले, और भी नियम है लेकिन मुख्य रूप से ये दो नियम पहले, अगर इन दो नियमों का आप पालन करके चलते हैं तो वहां क्या होगा, कदम कदम पर अनेक कार्यों में से सफलता आपको मिलती रहेगी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना, कुछ दुनिया में नेगेटिव विचारों का प्रभाव ज्यादा है। अब हम भोजन तो दे रहे हैं, शरीर का भोजन, लेकिन आत्मा का भोजन यदि रोजाना नहीं लेंगे तो निरंतर वो समस्याएं, परेशानियां, टेंशन, दुख अशांति बढ़ती जाएगी आपके साथ। तो अगर आप उन सबसे मुक्त रहना चाहते हैं, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो रोजाना ज्ञान योग का अभ्यास करके चलना, मुरली क्लास करना, ज्ञान का श्रवण करना रोजाना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आप में से कई जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें अनुभव है, हम भी अनुभव करते हैं इस चीज का। मान लो कोई आज आपके जीवन में समस्या आई, अगर आप डेली क्लास करते हैं, मुरली सुनते हैं, तो अगले दिन की मुरली में उसका समाधान आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से सभी जितना जितना इन दो नियमों का हम पालन करके चलें, और भी जो कर सकते हैं, अमृत वेला योग, सुबह उठ के भगवान को याद करना, डेली मुरली क्लास करना, तो आपको अनेक कार्यों में सहज सफलता अनुभव होती रहेगी। लास्ट पॉइंट, जीवन में सफलता पाने के लिए हम देखो जो चाहें हम, कभी वैसा ही तो नहीं हो जाता, कभी हो भी जाता तो कभी नहीं भी हो पाता, लेकिन हम ये समझ के चलें कि हमने नया रास्ता अपनाया है, हम मनुष्य देवता बनना चाह रहे हैं, हम जीवन में श्रेष्ठ सफलता पाना चाहते हैं। तो आप दुनिया में भी देखो, जितने भी लोगों ने एक सफलता के शिखर पर पहुंचे, उनके अनेक विघ्न परिस्थितियों को उन्होंने सहन किया है, पार किया है, तब जाकर उनको वो सफलता मिली है। तो हम भी अगर उस शिखर पर पहुंचना चाहते तो ये समझ कर आपको चलना होगा कि जीवन में हार जीत, सुख दुख, जय पराजय, निंदा स्तुति, ये सब कुछ होगा ही। तो इसको स्वीकार कर चलना है मन से। अगर आप मन से स्वीकार कर चलेंगे तो आप हर परिस्थिति में अपने को सुखी, एक समान स्थिति में रखकर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और इसके साथ साथ जो कुछ बातें बीत गई, एक दुख का कारण ये भी होता है ना कि आपको मान लो किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले बहुत दुख दिया, उतंग किया, और आप आज तक उसी बात को अपने मन में रखकर चल रहे हैं, फलाने ने मेरे को 10 साल पहले बड़ा धोखा दिया था, इन्होंने बहुत दुख दिया था, वो व्यक्ति शायद भूल भी गया होगा, लेकिन आज तक हम उस बात को अपने मन में रखे और दुखी परेशान बनाए हुए अपने जीवन को। तो इसलिए सुखी बनाने का आधार ये भी है कि बीती बातों को स्टॉप, बिंदी लगा देना, अगर आपने सुखी बनना चाहा, नहीं तो दुखी होते रहेंगे आप, बार बार उस बात को याद करते। और बिंदी फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे, कहना तो सहज है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल देता है, धोखा देता है या दुख देता है, तो उस बात को हम भूल जाए, बिंदी लग जाए, उसके लिए चाहिए क्या, विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग पावर का होना जरूरी है। और कंट्रोलिंग पावर कहां से आएगी, उसके लिए हम अपने विचारों को महान बनाएं। देखो नेगेटिव या व्यर्थ के विचार चल रहे हो तो उनकी गति फास्ट होती है और उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है, लेकिन पॉजिटिव पावरफुल विचार हैं, शक्तिशाली विचार हैं, तो उनको आप सहज कंट्रोल कर सकेंगे। तो विचार महान कैसे बनेंगे, विचार महान बनेंगे ज्ञान योग के अभ्यास से, विचार महान बनेंगे। और जहां विचार महान है तो उनको आप सहज कंट्रोल कर सकेंगे, और जहां कंट्रोलिंग पावर है तो वहां बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप लगाना सहज और सरल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन कुछ एक बातों को आप अपने जीवन का आधार बना के चलें, तो आप कदम कदम पर सहज सफलता प्राप्त करते निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। यही हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति।
आज भाई साहब ने हम सभी के ज्ञान में कितनी वृद्धि की है, अगर हमने उसको ध्यान से सुना हो तो हम उसको जरूर समझेंगे। भाई साहब ने बताया कि संकल्पों को हम अपने महान कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें उनको निरंतर पोषित करना पड़ेगा ज्ञान और योग के द्वारा। और भाई साहब ने जो हमें समान की एक भेंट दी है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इन बातों को हम, जैसा भाई साहब ने हमें एग्जाम्पल्स भी बताए, मेरा पूरा विश्वास है कि उनको अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे और अपने आगे आने वाले कर्मों को सुनिश्चित करेंगे तो सफलता सामने हमें रखी मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई कि हम सभी के लिए बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ भावना रखें। और कितनी मजे की बात है कि लोग पहले कहते थे कई बारी कि जो है झूठ बोलना बड़ा आसान है, सच बोलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे भाई साहब ने जो बताया, एग्जांपल्स भी दिए, उन्होंने बताया कि अगर कोई आपके लिए बुरा भी सोचता है और कहता करता है, उसके लिए भी शुभ भावना रखो। और हम देखेंगे उसका पैमाना है कि हम जब किसी के और सभी के लिए शुभ भावना रखते हैं तो हम स्वयं में मानसिक तौर पर कितने हल्के रहते हैं, क्योंकि हमने व्यर्थ और निगेटिव संचेत नहीं किया है। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने इतने राज हमारे साथ सामने शेयर किए हैं जो हमें वाकई में और सही मायनों में हमारे जीवन का आगे मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। ओम शांति।